मैं ही रहूंगी, अपनी ही छवि बनाऊंगी। मैं राधा नहीं बन सकती कि आज प्रेयसी प्रताड़ित है। मैं सीता नहीं बन सकती कि आज पतिव्रता पतित है। मैं मीरा नहीं बन सकती कि आज भक्ति भ्रमित है। मैं यशोधरा नहीं बन सकती कि आज विश्वास व्यथित है। मैं गांधारी नहीं बन सकती कि आज त्याग त्यजित है। मैं उर्मिला नहीं बन सकती कि आज समर्पण सारहीन है। मैं ही रहूंगी, अपनी ही छवि बनाऊंगी, कर्तव्य सारे निभाऊंगी। मैं ही रहूंगी, अपनी ही छवि बनाऊंगी। आप सब जानते ही हैं कि चुभन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, जिसमें आज जिनके साथ मुझे संवाद का अवसर मिल रहा है, उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि आपने लेखन, विश्लेषण और अनुवाद के माध्यम से हम सबको जोड़ा है। आपने स्वयं को बहुभाषा ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बहुभाषा में उत्तम लेखन का सृजन भी किया। आइए उस अनुसरणीय व्यक्तित्व डॉक्टर स्वर्ण ज्योति जी से मिलते हैं, जिन्होंने 8 भाषाओं का ज्ञान रखने के अलावा 4 भाषाओं में लेखन एवं अन्य साहित्यिक गतिविधियों से जुड़कर सही मायनों में साहित्य की भारतीयता को परिभाषित किया है। मातृभाषा कन्नड़ होते हुए भी आप हिंदी भाषा साहित्य, व्याकरण और उच्चारण पर अपनी पकड़ रखती हैं, और एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में पिछले 25 सालों से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार का कार्य कर रही हैं। आपको प्राप्त हुए सम्मानों की बात करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। पौंडिचेरी की उपराज्यपाल महामहिम डॉक्टर किरण बेदी जी द्वारा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु 2016 में सम्मानित। पौंडिचेरी के उपराज्यपाल महामहिम डॉक्टर इकबाल सिंह जी द्वारा 2013 में सम्मानित। राष्ट्रीय हिंदी अकेडमी द्वारा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु 2010 में सम्मानित। 2009 में कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री TN चतुर्वेदी द्वारा कर्नाटक राजभवन में जैन ग्रंथ के अनुवाद के लिए सम्मानित। इनके अतिरिक्त भी बहुत से सम्मानों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब और प्रतीक्षा नहीं, डॉक्टर स्वर्ण ज्योति जी से मिलते हैं।
नमस्ते मैम।
नमस्ते भावना, कैसे हो तुम?
मैं एकदम ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
मैं भी बिल्कुल मजे में हूँ।
और आज मैम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चुभन के पटल पर आपका स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी मैम बिल्कुल। और मैम आज महिला दिवस है और आप हमारे साथ हैं, तो क्यों ना हम इस विषय पर ही कुछ बात करें।
जरूर जरूर, कुछ बातें तो हो ही सकती हैं।
जी
आज खुले दिल से पूरे मन से कार्यक्रम में हूँ।
जी मैम बिल्कुल, वही वाला जोश होना चाहिए। आखिरी कार्यक्रम आपके साथ हमने श्री भूवेलय पर किया था, जिसका आपने अनुवाद किया था, इतना महान ग्रंथ है वो, तो आज बात करने का आपसे मौका मिल रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम अगर महिला दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि में नारी की मौलिकता का क्या औचित्य है?
नारी की मौलिकता, ये देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, तो मैं थोड़ा सा अपने अपने विचार इस तरह बताना चाहूंगी कि आज क्या होता है कि नारी को लेकर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समाज में नारी को एक बंदी बधाई दृष्टि से ही देखता है। एक समाज होता है अशिक्षित, पिछड़ा और ग्रामीण वर्ग, जहाँ उसे नारी को पर्दे में सजा कर रखने वाली वस्तु समझता है, और एक समाज होता है पढ़ा लिखा और बुद्धिमान वर्ग, जो नारी को अपने समकक्ष यानी पुरुष के समकक्ष देखना चाहता है। इससे क्या होता है, ये दोनों जो नजरिए हैं, ये स्त्री की मौलिकता को छीन लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी की मौलिकता को सम्मान मिलना चाहिए, और यदि हम एक बार उसको उसकी मौलिकता को देखने की दृष्टि विकसित कर लेंगे तो हम नारी को और सम्मान और प्रेम दे पाएंगे। ये उसकी विशेषताएं समाज के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के लिए महत्व को नारी का महत्व समाज खुद ब खुद सहज रूप से स्वीकार कर लेगा। ये तभी होगा जब हम नारी को उसकी मौलिकता के अनुसार उसकी विशेषताओं के अनुसार अपनाएंगे।
जी, बहुत
ना अपनी इच्छाएं ना अपनी इच्छाएं उस पर थोपेंगे ना उसकी किसी इच्छा को दबाएंगे।
जी,
तो ये बहुत और ये नारी दिवस का जो दिवस है
जी।
मैं थोड़ा सा बात इस पे भी कहना चाहूंगी कि नारी दिवस कोई दिवस नहीं होता है, ये तो हमने बना लिया है क्यों, हर दिन नारी का दिवस होता है। सुबह जब वो उठेगी तभी सब लोग चलेंगे
जी।
तो हर दिन नारी का दिवस होता है और नारे लगाने से, जुलूस लगाने से, नारी सशक्तिकरण के भाषण देने से या नारी विमर्श पे कुछ करने से, ये सब है, ठीक है, करते हैं, पर इन सब से कुछ नहीं होता
जी।
सब बात तो तब होती है कि जब नारी उसकी मौलिकता के अनुसार वो अपने आप को स्थापित कर सकती है
जी।
और जब वो स्थापित कर लेगी तो कोई भी सशक्तिकरण, कोई भी विमर्श की आवश्यकता ही नहीं होगी
जी। बहुत सही काम,
हाँ, उसका काम ही दिखता है
जी,
दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है
जी। जी,
तो सबसे बड़ी बात यही है कि उसकी मौलिकता को हमें जरूर से जरूर सम्मान देना चाहिए।
बिल्कुल, सम्मान वाली बात जी।
ये मेरे हिसाब से नारी की मौलिकता का औचित्य है
जी। बहुत ठीक आपने कहा मैम। और मैम एक बात और पूछना चाहूंगी कि वैसे तो बहुत अंतर आया है आज हमारे समाज में और महिलाएं बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं जो पहले नहीं कर पाती थीं, लेकिन विडम्बना ये भी है कि आज भी समाज में नारी का दर्जा निम्न माना जाता है, आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
हाँ, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। इसमें मैं जरा सा कुछ और भी जोड़ना चाहूंगी
जी।
जैसे मैं कुछ अपनी भूमिका भी बताना चाहूंगी कि सृष्टि का विस्तार जब हुआ है तो जब सृष्टि का विस्तार करने वाली आदि शक्ति एक ही थी
जी,
वह न स्त्री थी न पुरुष
जी।
इसीलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी माँ भी वही है और पिता भी वही है। अब आप उसे शिवा मानकर पूजे या शिव मानकर
जी,
शक्ति तो एक ही है और दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसीलिए हमारे समाज में अर्धनारेश्वर की मान्यता को स्वीकारा गया है
जी। जी,
इसी तरह हर नारी में एक नारी, हर नर में एक नारी और हर नारी में एक नर तो होता ही है, रहता ही है
जी।
ये व्यवस्था प्राकृतिक रूप से है, इसमें कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक मोनालिसा की पेंटिंग में यही माना गया था कि विंची मोनालिसा में खुद को देखते थे
जी। जी,
इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी पेंटिंग को बना के उन्होंने अपने मन में जो था उस नारी का रूप दिया है
जी।
आपने देखा भी होगा कि कई चीजें हमारे पुरुषों में नारी के अनुसार होती है। कई लोग खाना बनाना बहुत पसंद करते हैं, कई लोगों को, कई नारियों को भार उठाना बड़ा आसान लगता है
जी।
ये सब कोई मतलब विशेष ये नहीं है कि हमने उसका अभ्यास किया है
जी।
ये सहज विशेषताएं हैं जो होती ही हैं, जो उभर के आती हैं जब हम उसको उभारते हैं
जी।
तो ये व्यवस्था जो है वो प्राकृतिक रूप से होती है, परंतु क्या होता है, इतना सब होने के बावजूद भी नारी का शोषण किया जाता है, नारी का दर्जा निम्न ही माना जाता है। तो मैं अपनी एक पंक्ति आपको सुनाऊंगी, एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जिनमें नारी अपनी व्यथा को कुछ इस तरह कहती है। तो हम कुछ बातों के साथ साथ कविताएं भी सुनाती चलूंगी मैं आपको।
वो तो बिल्कुल होना चाहिए मैम, आप आए और कविता ना हम सुने ये तो फिर ठीक नहीं होगा, हमारे श्रोता भी नाराज हो जाएंगे।
अरे तो नाराज तो मैं नहीं कर सकती किसी को, तो सुनो कविता कुछ अपनी नारी जो है अपनी व्यथा को कुछ इस तरह कहती है कि मैं सजाती रही तुम्हारा घर द्वार। मैं सजा, इसमें एक बात और भी देखना कि मैंने यहाँ प्रतीक के रूप में भगवान की मूर्ति को भी लिया है और प्रतीक को पति भी माना है।
जी।
तो ये कविता दोनों के लिए ही मैंने लिखी है।
जी जी।
मैं इसमें कहती है कि मैं सजाती रही तुम्हारा घर द्वार, पूछती रही तुम्हें समझ सच्चा आधार, भी अग्नि परीक्षा भी बार बार, पर तुमने न दिया कभी कोमल भाव, तुमने न दिया कभी कोमल भाव, जो भी जब भी दिया केवल घाव ही घाव। तुम घर देते हल्का सा एक प्यार, तुम घर देते हल्का सा एक प्यार, कोमल सा एक दुलार, तो शायद मुझमें भी हो जाता शक्ति संचार, भर जाता मेरा भी रिक्त संसार। पर नहीं, पर तुम रहे केवल मूर्ति पाषाण। यहाँ पे देखिए, ये मूर्ति पाषाण, भगवान की पाषाण मूर्ति भी है, और पति को ले भी वो कह रही है कि तुम मूर्ति पाषाण हो।
जी जी।
पर तुम रहे केवल मूर्ति पाषाण, बन न सके कभी भगवान, बन न सके कभी भगवान। तो नारी अपनी व्यथा को भगवान के सामने, उस पाषाण मूर्ति के सामने कह रही है कि तुम तो मूर्ति पाषाण ही हो, पर ये अप्रत्यक्ष रूप से वो यह भी कह रही है कि पुरुष समाज यही है।
जी। और मैम, जैसा अभी आपने कहा था कि हर पुरुष में एक नारी और हर नारी में एक नर होता है, तो वही वाले जो गुण आपने कहे थे स्त्री उचित गुण अगराध है पुरुष में भी, जैसे यहाँ पर आपकी इन पंक्तियों में नारी कह रही है कि तुम पाषाण हृदय हो या जो भी, तो वही वाली बात आ गई अर्धनारीश्वर वाली।
जी हाँ जी। तो ये मतलब समझने की बात है, ये तो मतलब इतना सब होने के बाद भी बहुत अत्याचार होते हैं और बहुत शोषण होते हैं।
जी।
इसमें शायद कुछ आप अगला प्रश्न है कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ और पूछना चाहती हैं, तो मैं आगे अपनी बात कहीं और सही से किसी और सिरे से शुरू करूँ।
नहीं मैम, मैं एक बात, जैसे आज की बात तो आपने कर दी, अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पौराणिक कथाओं में भी नारी का शोषण हुआ था, जैसा हम लोग देखते आए हैं पढ़ते हैं जो अब अपनी कथाओं
की? ये तो मतलब हमने तो पढ़ा ही है, बहुत सारा पढ़ा है, सीता भी है, अहल्या है, द्रौपदी है, या फिर यशोधरा को देख लो, मतलब हर हर युग में एक ना एक नारी मिली जाएगी।
जी जी।
यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी भी अपना, उस पर भी रावण अपना शासन ही चलाता था।
जी बिल्कुल।
क्यों चलाता था, इसका कारण क्या है? क्योंकि अस्मिता, स्वतंत्रता और सामाजिकता, अस्मिता, स्वतंत्रता और सामाजिकता, इन तीनों शब्दों में मानव तीनों लोक समाये हुए हैं। सदियों से स्त्री और पुरुष का सारा संघर्ष इन्हीं तीन शब्दों की धुरी पर केंद्रित है। क्या होता है, स्त्री स्वातंत्र और सामाजिकता से एकाकार होकर अपना अस्तित्व सुरक्षित करना चाहती है, वो स्वतंत्र भी रहती है और रहना चाहती है और समाज के साथ जुड़ना भी चाहती है।
जी।
इस तरह वो अपना अस्तित्व सुरक्षित करना चाहती है। तब क्या होता है, पुरुष स्त्री की इसी चेष्टा से घबरा जाता है।
जी बिल्कुल।
मुझे लगता है कि अब मेरा अस्तित्व शंकित हो उठेगा, सशंकित हो जाता है कि अब मेरा अस्तित्व कम होने लगेगा। तब वो क्या करता है, स्त्री को अपने से एक एक दर्जा नीचे रखने के प्रयास में जुट जाता है।
जी जी।
यहाँ पे क्या होता है कि वो कोई शत्रुता नहीं होती है, यहाँ कोई मामला आपसी शत्रुता का नहीं होता है, वरना एक दूसरे को भली भांति समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए ये होता है। तो देखो, महाभारत में है द्रौपदी के साथ हुआ, रामायण में सीता के साथ हुआ, या आज के युग में, आज का युग भी जहाँ कलयुग में नारी इतना आगे बढ़ गई है, शिक्षा के प्रसार के कारण इतना पढ़ लिख कर उड़ने लगी है हवा में, इसके बावजूद भी उसके अस्तित्व को बहुत ही दबाया जाता
है। यही बात मैम लगती है पूरी, कि जो आज नारियां इतनी आगे बढ़ गई हैं फिर भी ये सब हो रहा है, ये देखकर थोड़ा दुख लगता है।
हाँ, इसमें क्या होता है कि नारी का जब इस तरह दबाव होता है तो उसका अस्तित्व जो है पूरे समाज पर गहराई तक प्रभावित करता है, पूरे समाज को।
जी।
और पूरे समाज को परिवर्तित भी करता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, पूरे समाज को उसने बदल डाला था। इस युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे होना ही था, मतलब सब कह सकते हैं। पर यदि गहराई से सोचा जाए तो गांधारी जो थी, यदि उसकी उस वह भी एक कारण थी इस युद्ध के लिए। तो एक बहुत सुंदर कविता मेरी, जिसपे एक पेंटिंग भी किसी ने बनाई थी, मुझे याद नहीं है कि उसने कहाँ बनाई थी, परंतु उस कविता के साथ मैं आपको वो गांधारी पर लिखी थी मैंने, तो मैं आपको वो कविता अभी सुनाती हूँ, आप सुनिए। तो इसमें पता चलता है कि गांधारी ने, यदि वो मतलब अपना स्वभाव, अपना जो पट्टी बांधने का जो निर्णय था,
जी,
यदि वो नहीं लेती तो कैसा रहता
जी।
तो कुछ ऐसे ही मेरे विचार में मैं पूछती हूँ गांधारी से, री गांधारी, री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी री? तूने तो सुन ली थी समय की पदचाप, तूने तो सुन ली थी समय की पदचाप, फिर क्यों रही तू चुपचाप? री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी रे? तूने तो देख ली थी भविष्य की चाल, तूने तो देख ली थी भविष्य की चाल, फिर क्यों नहीं बनी तू राज्य की ढाल? री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी? तूने तो समझ ली थी शतरंज की बिसात, जब शतरंज की बाजी खेली गई थी तो वो जानती थी कि क्या होने वाला है।
जी, बिल्कुल।
तूने तो समझ ली थी शतरंज की बिसात, फिर क्यों नहीं रोका तूने भाग्य का हाथ? फिर क्यों नहीं रोका तूने भाग्य का हाथ? री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी रे? री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी? सती धर्म की कसौटी पर, सती धर्म की कसौटी पर राज्य धर्म को तू भूली, पुत्र प्रेम में जकड़े पिता के लिए, पुत्र प्रेम में जकड़े पिता के लिए तूने कर्तव्यों की दी बलि। यदि वो पिता के लिए धृतराष्ट्र का हाथ थामती और अपने पुत्र के प्रति उसको रोकती तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था।
बिल्कुल।
री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी? आज है सब आंखों के होते अंधे, आज है सब आंखों के होते अंधे, कसे जाते हैं चहु और शिकंजे और फंदे, नारी का ना कोई मान ना कोई स्थान, नारी का ना कोई मान ना कोई स्थान, देख री गांधारी तेरे सती धर्म का कमाल। री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी रही? री गांधारी, गर तूने थामी होती अंधे की डोर, गर तूने थामी होती अंधे की डोर, इतिहास का चेहरा होता कुछ और। सती धर्म की लटका कर तलवार, सती धर्म की लटका कर तलवार, झेले हैं आज भी नारी अत्याचार, झेले हैं नारी आज भी अत्याचार की। री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी री? री गांधारी, तूने पट्टी क्यों बांधी?
बहुत सही, बहुत सही। और ये तो पट्टी बांधना एक तरह से पलायन करना था, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बचने की तो देते थे
उसे। तो अर्धांगिनी का जब हम नाम देते हैं नारी को, तो इसका मतलब क्या है कि सुख दुख हर चीज में, विपदा में, सभी जगह वो यदि पति का साथ निभाती है, पति का साथ चाहती है, तो पति को साथ भी देना है वो।
बिल्कुल।
तो आज अंधे की डोर, अंधे की, आपने देखा होगा कई बार कि एक अंधे की लाठी को एक आंख वाला लेके चलता है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल।
वो भी वो आंख में पट्टी बांध के नहीं चलता है।
बिल्कुल ठीक मैम।
तो है ना, तो ये मतलब मैं सती हूँ, मैं ऐसा हूँ, सती धर्म का उसने बहुत बहुत सती पुण्य कमाया उसने, परंतु बहुत कुछ रोक भी सकती थी वो।
बिल्कुल। आंखों के होते हुए अगर आंखों से काम लेती तो शायद कुछ और भी ज्यादा वो सती धर्म उनका होता, पति का साथ निभाती।
हाँ, तो ये एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मेरा मानना है कि ये कारण भी है जिससे हमें मतलब नारी एक तरह से खुद को भी असहाय महसूस करती है कि मेरा पति अंधा है तो मैं क्यों जग को देखूं। तो
जी
ये एक तरह से शोषण ही हुआ, तो
बिल्कुल
वहां भी शोषण ही चल रहा था।
जी मैम।
जी
और मैम अब हम थोड़ा सा व्यावहारिक बात करें कि नारी की स्थिति का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माँ के रूप में नारी पृथ्वी पर अपने सबसे पवित्रतम रूप में होती है मैम। तो एक माँ का आंचल जो है वो उसके संस्कारों की पहली पाठशाला होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
ये बहुत ही मतलब महत्व की बात है कि नारी एक पूर्णता प्राप्त करती है जब वो माँ बनती है,
जी
और माँ बनने के बाद उसका जो अधिकार और उसका कर्तव्य, उसके अधिकार बदलते हैं नहीं बदलते हैं ये तो मैं दंके की चोट पर नहीं कह सकती, परंतु कर्तव्य उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
जी
बढ़ जाते हैं हर 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 चीज में, हर जगह उसका मतलब माँ बनने के बाद बच्चे को लालन पालन के साथ घर को संभालना बहुत बहुत कुछ बदल जाता है उसकी जिंदगी में।
जी
और यदि उसकी जिंदगी में लड़का और लड़की पर भेद करने वाला कोई परिवार मिल जाए तो और भी बहुत तकलीफ हो जाती है उसे, क्योंकि दोगुलापन का व्यवहार होने लगता है। पर होता है क्या
समझते
है,
हैं आज के समय में ये स्थितियां कुछ बदली नहीं है, आजकल इतना भेदभाव नहीं होता शायद।
नहीं, ऐसा है कि हम एक समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ हमें लगता है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण ऐसी स्थितियाँ बदल गई हैं, तो ये शायद मतलब एक मलहम लगाने का जैसा है, लेप लगा रहे हैं हम, पर वास्तव में ये स्थिति अभी भी बहुत जगह पे है, बहुत स्थानों पे है। और ये मतलब मैं एक स्कूल भी चलाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि तुम्हें मालूम होगा,
जी।
तो मेरा जो स्कूल है वो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए मैंने स्कूल शुरू किया है, तो उसमें मेरा एक ध्येय रहता है, लक्ष्य रहता है कि मैं लड़कियों को बच्चियों को लाऊं। लड़के तो किसी तरह कहीं भी पढ़ ही लेते हैं, चाहे क्योंकि जहाँ मैं जिन बच्चों को लेने जाती हूँ वहाँ पे बच्चे जो उनके माता पिता हैं वो अपने लड़के को आगे कर देते हैं कि इसको पढ़ाइए, ये क्या करेगा, ये घर जाए पढ़ेगी पढ़ेगा, और घर पे जो लड़की है जब हम दोनों काम पे जाएंगे तो ये घर की देखभाल करेगी। तो ऐसे बहुत से लोगों को मैंने उन लोगों को समझा के लिया दिया है, बच्चे को मैं लेके आई हूँ, परंतु इसके बावजूद भी वो दूसरी तीसरी या चौथी तक पढ़ा के बच्चे वापस ले जाते हैं, नहीं मैम हमसे नहीं होगा घर पे, हम बच्चे लड़का तो है ठीक है वो पढ़ लेगा तो बाद में कमाएगा, इसका क्या है, इसको शादी करनी पड़ेगी। आज भी स्थिति नहीं बदली है, बहुत जगह ऐसी ही है, क्योंकि एक चीज और होती है कि जो स्त्री होती है वो समाज की एक ऐसी इकाई होती है जिस पर संबंधों और अंतर संबंधों की एक लंबी क्षैतिज टिकी होती है,
जी।
इसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं है, सारे सामाजिक पारिवारिक संबंध जो होते हैं वो पुरुष से ही आरंभ होते हैं, लड़कों से ही आरंभ होते हैं और पुरुष के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। बेटा पढ़ लेगा तो बहुत है, परंतु आज स्थिति बदल रही है, जैसे तुमने कहा कि आज स्थिति बदल रही है, शिक्षा के विकास के साथ साथ मानसिकता भी बदल रही है। मैंने जो अभी आपको एक कविता आगे सुनाऊंगी ये एक मेरे स्कूल में आने वाली एक सच्ची बच्ची की कहानी है, तो उसने अब मेरे साथ अपनी बात कही तब मुझे लगा कि कितनी मतलब उससे कितनी तड़प होती होगी जब ऐसे घर में चलता होगा उसके घर में, तो वो अपने बात को कुछ इस तरह कहती कि अपने बच्ची जो है वो अपनी माँ की स्थिति का अनुमान लगाते हुए कुछ इस तरह कहती है, चोटी ना बना सके बिखरे छितरे घनघोर बादल, ऐसे इतने बादल छितरे हुए हैं कि जिनकी चोटी भी लंबी चोटी नहीं बन सकती, उसके बहुत लंबे बाल थे, तो अपने बालों के साथ ही उसने बात कही, चोटी ना बना सकूं बिखरे छितरे घनघोर बादल ऐसे, कभी कभी छोटा सा चंद सब कुछ, बस देखे झरोखों से मेरी अम्मा, बस देखे झरोखे से मेरी अम्मा, सर्दी गर्मी बरसात का भी अनुभव, सर्दी गर्मी बरसात का भी अनुभव, बस प्रकोष्ठ ही करण है, यही है अम्मा की आठ दिशाएं, यहीं पर दुनिया अम्मा सजाए। टुकुर टुकुर गिलहरी झांकती, टुकुर टुकुर गिलहरी झांकती, नन्हे नन्हे बच्चे बिल्ली के, चिड़िया भी घोंसला बनाती, चिड़िया भी घोंसला बनाती, गैया बच्चे को दूध पिलाती, सभी साथी हैं एक दूजे के, पर घर में कल भी नाना के, यानी नाना के घर, पर घर में कल भी नाना के, घर में आज भी पापा के, बस अम्मा ने दहलीज नहीं लांगी, बस अम्मा ने दहलीज नहीं लांगी, गली के कोने के घर में सेंट लगाकर भैया जब तब है जाते, भैया जा रहा है बाहर, पापा भी उसके घर, इन्वर्टेड कामों में है ये, बाबा भी उसके घर जब तब है आते जाते, अम्मा चुपचाप आंसू बहाती, मैं भी माँ बनूंगी एक दिन, सच है मैं भी माँ बनूंगी एक दिन, फिर भी अम्मा की तरह कभी नहीं, फिर भी अम्मा की तरह कभी नहीं, माँ बनूंगी एक दिन, अम्मा की तरह कभी नहीं, कभी।
वाह मैम, बहुत ही दिल को छू गई मैम, और एक माँ की व्यथा को एक बेटी ही समझ सकती है, बहुत अच्छा आपने चित्रण किया।
तो जब मैं उसको लेके आई थी स्कूल में, तब वो मतलब बता रही थी कि ये ऐसे सब घर में हुआ था, आज मुझे लेके आई हैं आप। तो ऐसा है, आज भी यही चलता है
लेकिन एक बात है मैम, जिन बेटियों के साथ ऐसा होता है, फिर वो वास्तव में जब शादी होती होगी और खुद माँ बनती होगी, तो उन्हीं बातों का फिर असर आता है शायद समाज में।
हाँ बस यही होता है तो उन बेटियों पर भी मैं मतलब कभी कभी लगता है ना कि इस विषय पर ज्यादा बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है अपने स्कूल में, तो मुझे लगता है कि कहीं हम खुद ही जिम्मेदार तो नहीं है इन सब के लिए, हम सभी जिम्मेदार तो नहीं है इन सब के लिए, पर हम घर में बैठे, हम क्या होता है कि अत्याचार हो रहे हैं, जान रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं हम
जी।
तो हम सभी जिम्मेदार हैं किसी न किसी रूप में।
ठीक है,
तो मैं इस विषय पर बहुत मतलब बात करने में मुझे लगता है कि चर्चा का विषय लंबा खींचता चला जाएगा, अंत में कुछ निर्णय या कुछ इसका परिणाम तो सामने कभी आता नहीं।
ठीक कह रही मैम, खाली आज दिन बात करने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रही
हैं, है ना,
बिल्कुल
यही होता है
जी जी क्या कहा जाए मैम, बुरा भी लगता है लेकिन वही है कि क्या करो अब। और मैम आज की भी स्थिति पर विचार करें तो आज भी स्त्रियों पर अत्याचार तो हो ही रहा है, इसलिए क्या किया जाए इस चीज को।
हाँ आज भी बस हो ही रहे हैं, दहेज प्रथा इतना चलता है, बलात्कार होते हैं, नारी का पर्दा प्रथा भी बहुत बहुत ही विकृत रूप लेने लगा है आजकल, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा का मतलब अभाव, बहुत कुछ है। तो एक प्रश्न मैं अपने अपनी कविता के माध्यम से समाज से पूछने की कोशिश करती
हूँ। जी जी बिल्कुल करें।
तो क्या होता है कि नारी जो है आज के युग में अपनी योग्यता क्षमता को उसने प्रमाणित कर दिया है
जी,
कि मैं बहुत योग्य हूँ, और उसने अपना आकर्षक रूप भी बना लिया है
बिल्कुल,
और उस आकर्षक रूप से पुरुष वर्ग चकित रह गया है, भौचक्का रह गया है, उसे पचा नहीं पा रहा है कि क्या हो गया भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि आप, बहुत दूर की बात नहीं कह रही हूँ कि मैं जब मैंने मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय, तो मैं मतलब इकोनॉमिक्स में एमए कर चुकी थी और मैं पीएचडी डॉक्टरेट के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती थी
जी।
तब क्या हुआ कि मेरी शादी तय होने लगी, तो मैंने मेरे बाबूजी से कहा कि मुझे ये करना है, तो बोले अरे अरे लड़का नहीं मिलेगा फिर, इतना पढ़ लोगी तो
जी।
तो ये था उस समय कि बड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से शादी नहीं करते थे लड़के, पुरुष वर्ग जरा हिचकिचाता था करने में
जी।
क्यों, उसे लगता था कि शायद ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा, तो मेरा उसका अहंकार, उसका अहम कहीं ना कहीं आड़े आता था। और यही कारण है देखना तुम कि कई बड़े बड़े लोगों में जहाँ लड़की सुंदर भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है, पर थोड़े से दिनों के बाद पता चलता है कि वो नहीं रही
जी।
उसकी मौत हो गई। उसके पीछे एक कारण होता है दहेज। दहेज के कारण भी बहुत सारी बहनें आज बलि चढ़ रही है
जी, जी।
तो ये जो है दहेज प्रथा को बंद करना है, दहेज कानूनी अपराध है, ये सब कुछ है, कानून है, पर ये कानून सिर्फ कानून है। तो इससे मैं पूछना चाहती हूँ समाज से कि एक रेखा, रेखा के माध्यम से मैं उससे पूछना चाहती हूँ, एक रेखा शिशु ने पालने से रिश्ते मूत्र से बनाई। जब शिशु पालने में सोता है और मूत्र करता है तो एक लंबी सी पतली रेखा बन जाती है नीचे के आते हैं, ध्यान दियो है ना
जी।
तो क्योंकि अभी तो मेरी बच्ची भी है छोटी सी, तो मुझे ध्यान में आता है
जी।
तो हाँ, तो एक रेखा शिशु ने पालने से रिश्ते मूत्र से बनाई, एक रेखा बचपन में नन्ही उंगलियों ने खींची। कभी कब एक छोटे से बच्चे को यदि पेंसिल पेंसिल दे दिया जाए तो कुछ कुछ खींचता रहता
जी,
है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं। तो
जी,
एक रेखा, हाँ, एक रेखा बचपन में नन्ही उंगलियों ने खींची, एक रेखा खेल में आंगन के धरती पर बिछी, एक रेखा जवानी में सुहाग रात में तेरे सीने पर लिखी। पर सभी रेखाएं समय के साथ साथ हल्की होती हुई मिट गई। पर मेरे दोस्त सुनो, 40 ग्राम सोना 40 लाख नगदी, 40 ग्राम सोना 40 लाख नगदी, हीरो होंडा और चांदी, घर बंगले के साथ भी, दहेज के लिए मर मिटने की, जो ना मिटाई जा सके ऐसी सीमा रेखा कब खींचोगे, ऐसी सीमा रेखा कब खींचोगे इन सब के लिए, बोलो।
बहुत सुंदर मैम, बात तो शायद थोड़ी कड़वी लग रही है लेकिन बहुत सच है इसमें।
सच्ची बात तो कड़वी होती ही है ना
जी। क्योंकि मैम इस तरह के जब हम दिवस मनाते हैं, किसी भी तरह के दिवस मनाए जाए, महिला दिवस हो, हिंदी दिवस हो, किसी भी दिवस को आप देखें तो जरा बहुत ही हम सकारात्मक बातें करते हैं और नकारात्मकता से भरी बातें करते तो लगता है कि भाई ज्यादा ही कुछ हो रहा है। लेकिन आपने ठीक कहा कि ये सब कुछ है और चर्चा इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी समानता है, लैंगिक समानता की बात हो रही है महिला दिवस पर तो कहाँ से समानता है।
बिल्कुल है ना, कहाँ की समानता है। आप एक ना एक दिन, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाती
जी। बिल्कुल, और जैसा
खबर है
नारी की मौलिकता होनी चाहिए, तो जो हम समानता की भी बात करते हैं, मतलब पुरुष के बिल्कुल समान नारी, पुरुष के समान कैसे होगी, उसकी मौलिकता अपनी जगह है, उसकी अलग, तो ये है कि समानता से ज्यादा सम्मान मिले, उसको अधिकार मिले, सम्मान मिले, समानता की बात तब आएगी पूरी तरह से।
होता क्या है कि पुरुष के समान नारी जब हम बात करते हैं तो ये बात नहीं कि वो अखाड़े में जाके कुश्ती लड़े और जरा जरा बड़ा बड़ा भार उठाए और कुछ कुछ काम करे। समकक्ष होने का मतलब ये है कि जो वो है उसको सम्मान दिया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो वो समकक्ष जितना हम, जितना आप यदि एक आदमी, एक पुरुष डॉक्टरेट करता है या डॉक्टर बनता है या इंजीनियर जो भी बनता है, तो उसको जो सम्मान मिलता है और वही एक नारी यदि उसी स्तर पर मिलती है, उसका सम्मान क्यों कम है। वो भी वही है, ये भी वही है। तो समकक्ष होने का मतलब ये है कि वो उसका उतना ही सम्मान उसको भी दिया जाए जितना उसकी, जितनी उसकी योग्यता है,
बिल्कुल
उसकी मौलिकता है। वो कढ़ाई बहुत अच्छी करती है
जी,
पर बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर सही बात है कि वो डॉक्टरेट करके सर्जरी नहीं कर सकती, तो इसमें कम तो उसका कुछ नहीं हुआ ना
जी। जी,
तो ये मौलिकता जो है उसको बरकरार रखते हुए यदि हम उसको सम्मान दे तो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है
जी।
ये मेरा मानना।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैम हम इस दिवस, हाँ जी बताएं, कह
ना बोलो, नहीं नहीं बोलो, कुछ बोल रहे थे।
रही हूँ कि हम इस दिवस को स्त्री पुरुष समानता दिवस के रूप में मना रहे हैं, और समानता के लिए अधिकार नहीं सम्मान के भाव का होना आवश्यक है, जैसा भी हम लोगों ने सोचा। तो क्या आपको लगता है कि आज की नारियों को जो स्वतंत्रता मिली है वो पर्याप्त है, समानता का भाव है वहां पर?
क्या होता है कि नारी को आज नारी युग कहा जाता है, नारी स्वतंत्रता युग कहा जाता है, सब कुछ है नारी को, भारतीय नारियों को या नारियों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम और आप भी इसी के उदाहरण हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु उसे आजादी की वास्तविक जमीन, वास्तविक जमीन मतलब उसका वो मौलिकता का सम्मान उसे आज भी नहीं मिल पाया है। स्वयं स्त्रियां भी अपनी पिछड़ी संस्कार जनित मानसिकता से, यहाँ पे सुनो मेरी बात है कि मानसिकता, कि अरे मेरी शादी हो गई अब मैं क्या सजूंगी, मैं तो लड़की नहीं रही, अरे मेरी शादी हो गई अब मैं क्या बाहर जाऊंगी, अब कौन सा बाहर घूमना है, ये जो मानसिकता है इससे हम उबर पाने में आज भी अक्षम है। हम नहीं उबर पाते, हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं, इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हमें कुछ और भी सोचने का समय ही नहीं मिलता। और जब हमें समय मिलता है या जब हमें समझ में आता है, देखो आज कई नारियों के साथ ऐसा होता है, कई स्त्रियों के साथ ऐसा होता है, बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ जानती हैं, पर वो घर ही में रहती हैं, घर की चार दीवारी में ही होती हैं। जब उन्हें एक समय के बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं या बहुएं आ जाती हैं या बेटियां शादी करके बाहर चली जाती हैं, और जब वो बेटियां आती हैं उन्हें कहती हैं कि मम्मा ये तो ऐसा कर सकते हैं, आप तो ऐसा कर सकती हैं, तब उन्हें समझ में आता है हाँ ये सब तो मुझे आता है, मैं तो कर सकती थी
जी।
पर तब तक मतलब समय उस गुजर जाता है, तब तक उनके पास इतनी शक्ति नहीं बचती है कि वो कुछ नया करने के लिए कदम उठा पाती है, उठाना चाहती है। अरे अब क्या करना है, सब कुछ तो तुम लोग तो अपने घर में सेटल हो गए हो, अब मैं क्या करूंगी। देखो ये बहुत, ये एकदम सहज और वास्तविक बातें होती हैं ना स्त्रियों के बीच।
जी जी,
तो क्या होता है, मैं उसके उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी मसाले के डिब्बे में तो कभी दाल के, जरा ध्यान देना शब्दों में, कभी मसाले के डिब्बे में तो कभी दाल के, कभी तकिए के नीचे तो कभी साड़ी के, छोटे छोटे से कुछ लम्हे छिपा कर रखे थे, छोटे छोटे से कुछ लम्हे छिपा कर रखे थे, सिंदूर की डिबिया में तो कभी काजल की, सिंदूर की डिबिया में तो कभी काजल की, चूड़ियों के बक्से में तो कभी गहनों के, कुछ रंग भी रंगे सपनों को जोड़ कर रखे थे, हर दिन की दिनचर्या में उन्हें सहला लेती, हर दिन की दिनचर्या में उन्हें सहला लेती, एक दिन उन्हें जीने की चाह में बतिया लेती, आज सोचा उनसे खुद को बहलाऊं, आज सोचा उनसे खुद को बहलाऊं, सज धज कर खुद को रिझाऊं, जो अक्स अपना देखा तो पाया, जो अक्स अपना देखा तो पाया, अरे मैं तो कहीं नहीं थी, अरे मैं तो कहीं नहीं थी, मुझ जैसी ही कोई और थी।
बहुत
ना जाने कब हींग की छोंक में, ना जाने कब हींग की छोंक में, दाल के गलने पर, तकिए को बदलने में, साड़ी के खुलने पर, सारे लम्हे छीत गए, ना जाने कब सिंदूर के घुलने पर, कागज के फैलने पर, ना जाने कब सिंदूर के घुलने पर, काजल के फैलने पर, चूड़ी के टूटने पर, गहनों को बदलने पर, सारे सपने रीत गए, उन्हें सहला कर देखते देखते, उन्हें सहला कर देखते देखते, उन्हें जीने की चाह में, पल पल हर एक दिन बीत गए, पल पल हर एक दिन बीत गए, पर आज मुझे अभी जीने की सीख दे गए, आज मुझे अभी जीने की सीख दे गए। तो ऐसा होता है ना, हम कब सब कुछ भूल जाते हैं अपने आप को,
दाल मसाले और सिंदूर साड़ी में ही सारा जीवन वाकई लम्हे पड़े रह जाते हैं। बहुत ठीक कहा मैम, हालांकि फर्क आया है अब आज की जेनरेशन में थोड़ा सा, और महिला पुरुष समानता की बात जब हम कर रहे हैं तो पुरुषों के भी सहयोग की बात अब काफी होने लग गई मैम। जैसे आपने अभी बोला कि आपके और हमारे उदाहरण है, आखिर हमें सहयोग है तो हम लोग इतना सब कुछ कर पाते हैं, चाहे पिता का हो, चाहे आपको पति का हो या जैसे भी। लेकिन यह है कि हाँ, अभी भी बहुत कम है ये चीज, लेकिन है अब।
हाँ बिल्कुल, ये बात तो मतलब समय लगेगा, परंतु ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी तरह बदलेंगे, पर बदलेंगे जरूर
जी। उम्मीद तो रखनी चाहिए मैम।
उम्मीद पर तो दुनिया करते
हैं जी, बिल्कुल उम्मीद पर तो दुनिया। और मैम एक बात मुझे बहुत ही बुरी लगती है, और मेरे विचार से बहुत से लोगों को लगती होगी, कि जो नारी को अबला कहा जाता है, ये शब्द अब बर्दाश्त नहीं होता जब ऐसा कहा जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि अब नारियां बहुत कुछ कर रही हैं, और ऐसे क्षेत्रों में भी कर रही हैं जो पहले उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते थे, वैसे काम भी वो कर रही हैं। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
क्या हुआ है कि भारतीय समाज में नारी को अबला कहा है, इसका बहुत लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं
जी।
अबला का अर्थ निर्बला या दुर्बल या बल विहीना नहीं होता है। अबला का सही अर्थ है बल प्रयोग से ऊपर, जिसका जिस पर बल का प्रयोग ना कर सके। अजय का मतलब क्या होता है?
जिसको जीत।
वैसे ही अबला का मतलब होता है जिसके ऊपर बल का प्रयोग नहीं हो सका, वो नारी है। तो भारतीय संस्कृति में पुरुष और नारी को बराबर का दर्जा दिया गया है हमेशा से। मध्यकाल में शिक्षा की उपेक्षा हो गई, तो उस समय क्या हुआ, बाल विवाह चल गए, पर्दे की प्रथा हो गई, और नारी का स्थान थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। परंतु क्या हुआ, ये सामाजिक विकृति थी, हमारी मूल संस्कृति नहीं थी। भारतीय मूल संस्कृति में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार था
जी, बिल्कुल।
अनेक स्त्रियों को मंत्र दृष्टा दार्शनिका के रूप में ख्याति भी प्राप्त की थी
जी।
और दर्शन के क्षेत्र में गार्गी और मैत्रेयी के नाम से तो सभी परिचित थे।
बिल्कुल बिल्कुल,
है ना। तो नारी अबला का मतलब वो नहीं है जो लोग समझते हैं। स्त्री के इसमें क्या हुआ, आगे भी देखो, स्त्री के जो विविध रूप को लेकर जो साहित्य का रचना करते हैं, साहित्य की सृजन करने वाले होते हैं, उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने स्त्री के सभी भावों को पूर्ण रूप से लिख दिया है या सृजित कर दिया है
जी।
ये नहीं कर सकते हैं, ये स्त्री का रहस्यात्मक चरित्र है। ये कहते भी हैं कि नदी मूल और स्त्री का मूल नहीं ढूंढना चाहिए
जी।
ना, तो ये जो स्त्री रहती है ना, वो बहुत रहस्यात्मक चरित्र है, और ये मानव मन की समझ से परे है। वो जैसी दिखती है वैसा नहीं होता है, वो बहुत खुली खुली दिखती है, पर उसके बहुत कुछ अलग अलग अर्थ होते हैं। तो एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, वैसे मेरी सभी कविताएं मुझे पसंद है क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो।
बिल्कुल, हमें भी बहुत पसंद है मैम आपकी सभी कविताएं।
फिर आप कहोगे कि मैम कहती हैं कि क्या सभी कविताएं कहती हैं, परंतु सुनो
जी,
इसमें मैं नारी की बात कहती हूँ कि रहस्यात्मक चरित्र है, कैसी है वो
जी।
और कविता का शीर्षक है खुली किताब, और इस कविता को उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री के सामने मैंने पढ़ा था, तो वो उठ के गदगद होके उन्होंने अब मुझे अलग से बुला के उन्होंने बधाइयां दी कि आप इतनी सुंदर कविता मैंने कभी नहीं पढ़ी थी नारी की, और इतनी सरल।
तब तो जरूर सुनाए मैम, और जल्दी सुनाए।
तो ये है, एक खुली किताब हूँ मैं, एक खुली किताब हूँ मैं, जिधर से भी पढ़ो समझ में आ जाऊंगी। शर्त ये है मगर तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। स्पंदन से परे गहरी सुवास हूँ मैं, खुद अपनी वास हूँ मैं, पर एक खुली किताब हूँ मैं। चेहरे को देखोगे तो खो जाओगे, शब्दों को ढूंढोगे तो पछताओगे, भावों को बूझोगे तो उलझ जाओगे। नीची निगाहों से निहारो मुझे, नीची निगाहों से निहारो मुझे, मन मस्तिष्क को भेद दूं, ऐसी कटीली फांस हूं मैं। ना आंखों देखी ना कानों सुनी, ना आंखों देखी ना कानों सुनी, ऐसी बात हूं मैं, खुद अपनी बॉस हूं मैं, पर एक खुली किताब हूं।
बहुत सही।
लफ्ज लफ्ज में कहरे अर्थ छिपाए हुए हूं मैं, सफे सफे में जिंदगी बसाए हुए हूं मैं, हर एक एहसास हूं मैं, हर एक एहसास हूं मैं, जीने की आस हूं मैं, समझो तो पास हूं मैं, समझो तो पास हूं मैं, वरना एक राज हूं मैं, बहुत खास हूं मैं, खुद अपनी बास हूं मैं, फिर भी एक खुली किताब हूं मैं, जिधर से भी पढ़ो समझ में आ जाऊंगी, शर्त ये है मगर तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, एक खुली किताब हूं मैं, एक खुली किताब हूं मैं।
वाकई बहुत सुंदर मैम, और आपने तो पूरा नारी का एक परिचय दे दिया अपनी कविता में।
वो कितनी रहस्यात्मक है, सामने जो दिखती है वो ठीक है, नाजुक सी बहुत है, परंतु वो क्या क्या नहीं कर सकती, ये तो करने पे जब आए तब समझ में आ जाए।
बिल्कुल बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा लग रहा मैम आपसे बात करते हुए। और एक बात और मैम, एक महिला के तौर पर आप अपने साथ कैसा व्यवहार चाहती हैं ये जानना चाहूंगी। कोई भी महिला कैसा व्यवहार अपने साथ चाहती है तो आप ही आज हमें बताएं कि आप अपने साथ कैसा सोचती हैं।
हाँ, ये तो बिल्कुल बहुत ही महत्व की बात है कि हम अपने लिए क्या व्यवहार चाहते हैं। हम मतलब हम नारियाँ।
बिल्कुल।
तो क्या होता है कि भारतीय समाज में एक विशेष गौरव स्थान पर प्रतिष्ठित है नारियाँ। पुरुष ने सदा उसे अर्धांगिनी माना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था
जी।
इतना नहीं, वास्तव में व्यवहार में पुरुष मर्यादा से नारी मर्यादा सदा उत्कृष्ट मानी गई।
जी बिल्कुल।
नारी को मातृ देवता भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में यह उद्घाटित किया गया है, यह उद्घोषणा की गई है कि वह मानव के कामोपभोग की सामग्री ना होकर वंदनीय है, पूजनीय है। और नारी का जो है हृदय जो होता है बड़ा समर्पित और बहुत ही वात्सल्य पूर्ण होता है, परंतु नारी का जो मन होता है वास्तव मन, वो पुरुष के साथ कैसा चाहता है, पुरुष से ऐसा संबंध चाहता है वो हमेशा, जो एक शाश्वत संबंध हो। सात सात जन्मों का संबंध कहते हैं शादी विवाह में, पर ये बात अलग है। पर नारी जो चाहती है उसका संबंध पुरुष के साथ ऐसा होता है जो एक अमर हो जाए, एकदम से पवित्र, आत्मा को छूने वाला। तो जैसे कि कह लो मन को छूने वाला
जी।
तो छू सको तो मेरे मन को छू लो, छू सको तो मेरे मन को छू लो, गुन सको तो संग मेरे एक गीत गुन लो। सच्ची झूठी असली नकली सौ गाते, सच्ची झूठी असली नकली सौ गाते, कितनी सारी है कहने को बातें, कितनी सारी है कहने को बातें, सुन सको तो दिल की एक बात सुन लो, सुन सको तो दिल की एक बात सुन लो, छू सको तो मेरे मन को छू लो। प्रेम प्रीत मनुहार और तकरारें, प्रेम प्रीत मनुहार और तकरारें, जग में है रिश्ते कितने सारे, बुन सको तो उर का एक रिश्ता बुन लो, बुन सको तो उर का एक रिश्ता बुन लो, छू सको तो मेरे मन को छू लो। काया नश्वर, काया नश्वर, पाया तो क्या पाया, छाया है बस माया ही माया, चुन सको तो साचा बंधन एक चुन लो, चुन सको तो साचा बंधन एक चुन लो, छू सको तो मेरे मन को छू लो, गुन सको तो गीत एक मेरे संग गुन लो, छू सको तो मेरे मन को छू लो। ये नारी का मन होता है हमेशा।
बहुत सुंदर मैम, नारी के भाव आपने बहुत सुंदर उद्घाटित किए हैं। एक नारी इतना सुंदर चित्रण कर सकती है शायद। बहुत अच्छा लगा मैम, और कुछ कहना चाहेंगी मैम आज के दिन के लिए, वैसे ही महिलाओं के लिए और कुछ आप बता, क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि आप स्कूल चलाती हैं तो उसमें बेटियां आती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, तो और कोई आपका अनुभव ऐसा हो जो आप कहना चाहें?
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुल मिलाकर नारी जो होती है ना, वो सृजन और चेतना की प्रतीक है। विविध रूपों में, भिन्न भिन्न भूमिकाओं में, माँ, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में वह परिवार और समाज की संचालिका है। अपने अस्तित्व को जीवित रखते हुए वह मूल्यों की स्थापना और चरित्र निर्माण से परिवार ही नहीं वरन पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकती है, सार्थकता सिद्ध कर सकती है समाज और राष्ट्र की, और अपने आप को समाज और राष्ट्र के साथ साथ अपने आप को स्थापित कर सकती है, क्योंकि वो चेतना है और चेतना की प्रतीक नारी है, जिसको शत शत नमन है।
बहुत सुंदर मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने से चुभन पर मुझे आप जैसे लोगों से बात करने का अवसर मिल रहा है, और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैम आप लोगों के विचार जानने को मिल रहे हैं, बहुत ही मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आज के लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब बातें करके, परंतु तो होता क्या है ना, बातें ही बातें हैं, बातों से होता है क्या, पर बातें तो भी बातें हुई तो करनी चाहिए ना,
करने तभी तो फर्क तो पड़ता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आजकल बातें हो रही है तो फर्क पड़ भी रहा है, काफी पड़ा भी है, खाली हम एक पहलू ना सोचे दूसरा सोचे तो आया है काफी बदलाव।
बस यही तो यही बातों का प्रभाव है।
जी जी,
यही बातों का प्रभाव है जो फर्क आया है।
जी बिल्कुल,
तो आपके पॉडकास्ट से ये बातें सब तक पहुँचे और कुछ और प्रभाव पड़े, यही मेरी मेरे हमारे इस बातचीत की सार्थकता होगी।
जी मैम,
और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबी बातचीत हो गई पर मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी मैम, बहुत बहुत आभार। नमस्ते मैम।
नमस्ते।